प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 18 अगस्त 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों इसी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी के अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं ज्योति शर्मा पानीपत से, संदीप कुमार गोपालगंज बिहार से, बलराम जी बहराइच उत्तर प्रदेश से और आदित्य नारायण झारिया मंडला मध्य प्रदेश से। तो ज्योति, संदीप, बलराम और आदित्य आप सभी चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों इसके बाद हम सब बधाई देना चाहेंगे गणपत लाल को जो जयपुर से हैं, जिनका सिलेक्शन अभी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट राजस्थान हाई कोर्ट के लिए हुआ है और अपने इस सिलेक्शन के लिए उन्होंने डेली ऑडियो गाइडेंस के प्रति आभार व्यक्त किया है। तो गणपत आपको मैं एकेडमी के अपने पूरे सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही आपकी बहुत बेहतर भविष्य की सफलताओं के लिए हम सभी शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं। मित्रों मैं शुभकामनाएं और बधाई आप सबको रक्षाबंधन के पर्व की भी दे दूं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और आप सब डेफिनेटली उसमें भी इन्वॉल्व होंगे। एक बहुत ही प्यारा ये स्नेह का त्यौहार है, एक तो प्रेम का त्यौहार होता है और दूसरा स्नेह का त्यौहार होता है। भाई और बहन के बीच जो भारतीय परंपरा में स्नेह की जो धारा, जो एक तरल धारा जो प्रवाहित होती है, उसी का प्रत्यक्षीकरण हमें इस त्यौहार में मिलता है। तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत मेरी ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से बधाई। दोस्तों अब हम आते हैं एआईआर न्यूज पर। आप लोगों ने एआईआर न्यूज सुनी ही होगी, उसमें तीन चीजें बस मैं आपसे थोड़ा थोड़ा शेयर करना चाहूंगा क्योंकि एआईआर न्यूज में आज बहुत ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। फिर हम लोग आज कोशिश करेंगे कि समय बचाकर और जो प्री एग्जाम अभी जो हुए हैं आईएएस के, उसके बारे में कुछ बातें कर सकें। मित्रों जो पहली खबर थी वो एआईआर न्यूज पर भी थी और दूरदर्शन के चैनल पर भी थी, वो खासकर भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर। आप देख रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने भाषण में जो बलूचिस्तान, गिलगित एरिया और पाक अधिकृत पाकिस्तान की जो बात कही है, उस पर जो प्रश्न उठाए हैं, उसके बाद से लगातार इस पर लेख आने शुरू हो गए हैं। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि वाकई में एक बहुत बड़ा टर्निंग प्वाइंट भारतीय विदेश नीति का और खासकर पाकिस्तान के प्रति है, तो इस पर लेख आएंगे ही। और चूंकि लेख आएंगे और एक बहुत बड़ा बदलाव है पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति में, तो निश्चित रूप से सिविल सर्विस के लिहाज से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया कि इसके केंद्र में अब बलूचिस्तान आ गया है। ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन आप उसी संदर्भों को अगर, इस संदर्भ को अगर आप ध्यान में रखें तो जो पहली न्यूज है उसका जो कलर है, जो टेस्ट है, उसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वह आपको समझ में आ जाएगी, वह बात पकड़ में आ जाएगी, जिसे मित्रों मैं अक्सर कहता हूं बिटवीन द लाइन्स। कहीं तो नहीं जा रही है, कहीं नहीं गई है, लेकिन कहीं भी जा रही है, कहीं भी जा चुकी है, इसी को कहते हैं बिटवीन द लाइन्स। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अब जो पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी है, इस पर गौर कीजिए मित्रों, ये जो मैंने कहा बिटवीन द लाइन्स, कि अभी तक हम भारत पाकिस्तान के बीच में जब बातचीत होने की बात होती थी तो कश्मीर इशू पर बात कर होती थी कि ठीक है हम आओ कश्मीर की समस्या पर बातचीत करते हैं। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब बात कश्मीर इशू पर नहीं होगी, अब तो सीमा पार आतंकवाद पर होगी। ये बहुत बड़ा बदलाव है और सच बात यह भी है, अगर हम उस तरीके से सोचे तो कश्मीर पर हम बात करें ही क्यों, ये तो भारत की एक सदाशयता थी जो हमारे विदेश नीति में जो पंचशील का सिद्धांत है। 1972 में हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने आपसी विवादों को परस्पर बातचीत के जरिए सुलझाने के संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उसके तहत भारत इस तरह की बातें करता था। अदरवाइज सीधी सी बात है कि ये भारत में पाकिस्तान का, भारत में कश्मीर का बड़े विधिवत तरीके से विलय हुआ है, तो अब उसमें पाकिस्तान के हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो भारत उस पर क्यों बातचीत करे। तो मित्रों, उनका कि सीमा पार आतंकवाद, क्योंकि देखिए जो कश्मीर की समस्या भी है वह मूलतः आतंकवाद की समस्या है, और अगर कुछ आतंकवादी अलग कश्मीर की मांग कर रहे हैं या जो भी उत्पात मचा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कश्मीरी यही चाह रहे हैं। मित्रों, मैं आपको एक अनुभव शेयर कर सकता हूं। अभी कुछ महीनों पहले ही मैं और मैडम हम कश्मीर गए थे, और कश्मीर 5-6 दिन हम लोग रुके, और काफी दूर दूर के एरिया में भी गए जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग के भी एरियाज थे, और वहां के लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत की। वहां की जो आम जनता है उसका पाकिस्तान के प्रति कतई कोई जरा सा भी आकर्षण नहीं है, बल्कि सच पूछे तो उनको लगता है कि अरे पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, पाकिस्तान में तो वो हो रहा है, नहीं नहीं भारत बहुत अच्छा है, इस तरह की भावनाएं व्यक्त करते हैं, और उनका तो पूरा ध्यान अपनी रोजी रोटी पर है, और पूरा का पूरा टूरिज्म, आप लोगों ने अखबार में कल परसों के अखबार में पढ़ा होगा कि 90% टूरिज्म खत्म हो गया वहां का अभी, और इतने सालों के गैप के बाद तो वहां टूरिज्म की शुरुआत हुई थी, वहां के लोगों का किसी तरह से जीवन यापन होने लगा था, पूरा का पूरा खत्म हो गया। वहां की दस्तकारी खत्म हो जाएगी, वहां की जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह का मार्केट है वो खत्म हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था का तो आधार ही एक प्रकार से पर्यटन है। तो ये जो आतंकवादी हैं ये थोड़े से हैं, तो उन लोगों के व्यू को भारत, मतलब वहां के सभी लोगों का व्यू नहीं मान सकता। तो वहां जो मूल कारण है मित्रों, वो पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी हैं, कश्मीर की जनता खुद नहीं है। तो अभी जो स्टैंड लिया है वो सीमा पार आतंकवाद पर ही बातचीत हो सकती है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, आइए इस पर बातचीत कीजिए, आप इसको भेजना बंद कीजिए, अदरवाइज कोई बातचीत नहीं होगी। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा टर्न है, और भारत ने पहली बार इतना फर्म स्टैंड खासकर पाकिस्तान के खिलाफ लिया है, और देखिए कि अब ये क्या रूप लेता है। तो कुल इस बैकग्राउंड को देखते हुए दोस्तों, इन घटनाओं के बैकग्राउंड को देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बदलाव है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और दोस्तों, कल मैंने आप लोगों से बलूचिस्तान के बारे में बात की थी, और मैंने कहा था कि आप सब नक्शे में बलूचिस्तान को देखें, आइडेंटिफाई करें कि वो कहाँ है, किस तरीके से है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने मेरी इस बात पर भरोसा करके और इसको फॉलो किया होगा। कुछ को तो भरोसा ही नहीं हुआ होगा, कुछ को भरोसा हुआ होगा तो सोचा होगा कि कल परसों फॉलो कर लेंगे, और फिर वो कल परसों तो कभी आता नहीं है, और आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने फॉलो भी किया होगा। मित्रों, मैं एक बात आप लोगों को सच में पूरे शुभचिंतक के रूप में सलाह देना चाहूंगा, और वो ये कि जब मैं कुछ ऐसी बात कहता हूं तो मान करके चलिए कि उसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति है। मैं सोच विचार कर कहता हूं, क्योंकि मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, और वो होमवर्क सीधे सीधे, मैं तो नहीं कहता कि एग्जाम में काम आ जाएगा, लेकिन आपकी कैपेसिटी को बिल्डअप करने में डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसे यदि अभी जो एग्जाम हुए हैं उसका एक क्वेश्चन आप उठा करके देखें, जिसमें कुछ इस तरह का प्रश्न है कि खाड़ी आर्थिक विकास परिषद के निम्न में से कौन देश सदस्य है, कौन देश सदस्य नहीं है, कुछ इस तरह का प्रश्न है। मैं आपके चल करके आपको पढ़ करके बताऊंगा, अभी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, ये तो मैं चूंकि आपसे बातचीत कर रहा हूं तो अचानक मुझे ये प्रश्न ध्यान में आ गया। तो उसमें आप देखिए कि जो भी नाम दिए गए हैं चार देशों के, उसमें से अब आप सही नाम कैसे छांटेंगे, यानी कि जो खाड़ी आर्थिक विकास परिषद का सदस्य नहीं है। तो मित्रों, इसी को मैं कहता हूं कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर बेस आपको लगेगा कि अरे बाप रे इसके लिए तो हमें जो खाड़ी का जो आर्थिक विकास परिषद है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर उन जितने उसके सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों की नाम के नाम मालूम होने चाहिए। ऐसे तो दुनिया में पता नहीं कितने संगठन हैं, आप कितने कितनों को पढ़ेंगे, कितने कितनों के देशों के नाम याद रखेंगे और पता लगा कि एक ही देश अगर आप 100 संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं तो 30 में तो सदस्य है और 70 में नहीं है। कैसे ये क्या पॉसिबल है? तो आपको क्या लगता है कि जिसने ये प्रश्न पूछा है क्या वो मूर्ख है या कुछ जरूरत से ज्यादा होशियार है या कि आपसे बदला ले रहा है, क्या है? इसको सोच करके देखिए कि उसने ये प्रश्न पूछा क्यों है। आपको लगता होगा फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन है ये नॉलेज का क्वेश्चन है, ये नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी दृष्टि का क्वेश्चन है, आपकी कैपेसिटी का क्वेश्चन। और याद रखिए नॉलेज और कैपेसिटी में फर्क होता है। नॉलेज तो वह है जो आप किताब पढ़ करके गेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन वो है जो किताब पढ़कर गेन करते हैं, और कैपेसिटी वो है जो उनको गेन करने के बाद आप अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं, दैट इज योर रियल कैपेसिटी। मित्र मुझे ध्यान आ रहा है अभी 4-5 दिन पहले की बात है या एक सप्ताह पहले की बात होगी, मेरे एक स्टूडेंट ने जो शायद सेकंड थर्ड बैच की स्टूडेंट रही है उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी थी, खासकर प्री एग्जाम देने के बाद, शायद प्रियंका लिखार नाम है उनका जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि सर इस एग्जाम को देने के बाद अब मुझे ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कोई स्पून फीडिंग नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात उसने कही थी, कम से कम ये रियलिटी समझ में आई, और ये रियलिटी जिस दिन समझ में आ जाएगी चीजों में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। स्पून फीडिंग नहीं हो सकती, आपको सीधे सीधे चीजें प्रोवाइड नहीं की जा सकती कि आप लीजिए इसको पढ़ लीजिए और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, आपको भोजन दिया जा सकता है कि आप ये खाइए, खाने के बाद पचाइए, पचाने के बाद उसे अपने शरीर का अंग बनाइए, हिस्सा बनाइए और जाकर के पहलवानी कीजिए और रियो ओलंपिक में मेडल लेकर के आइए, ये तो किया जा सकता है, लेकिन चम्मच में दूध डालकर आपको पिलाया नहीं जा सकता। मित्रों इस बात को समझिए, उसमें आप देखिए कि जो 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं उसी में से एक अल्टरनेटिव ईरान का है। अगर आप मैप देख रहे होंगे लगातार, अगर आप मैप देखते होंगे तो आपके दिमाग में ये चीज तुरंत कौंध जाएगी कि यार ये जो ईरान है ये तो खाड़ी के देशों में शामिल ही नहीं है, जो खाड़ी के आसपास के जो देश हैं उसमें जो 3 नाम दिए गए हैं वो तो नक्शे में हैं, ये तीनों आसपास हैं, है ना। नाम देखिए मुझे याद नहीं आ रहा, यही होगा सऊदी अरब होगा, कुवैत होगा, ओमान होंगे, यही सब देश होंगे जो खाड़ी देश हैं, लेकिन ये ईरान तो भारत पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान इन सब के आसपास है, तो ये खाड़ी देश कैसे हो जाएगा? तो ये खाड़ी देश तो है ही नहीं, तो यही इस परिषद का सदस्य नहीं होगा, क्योंकि बट नेचुरल है कि उस परिषद का सदस्य कौन हो सकता है जो उस क्षेत्र का हो, क्योंकि है ये खाड़ी देश आर्थिक विकास कि जो खाड़ी के देश है उनके आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ वो संगठन है, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग है। तो मित्रों ये कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी तब होती है जब आप अपनी तैयारी करने के तरीके को बदलें। जैसे मैंने कहा कि आप बलूचिस्तान को देखिए नक्शे पर जाकर, तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि बलूचिस्तान कहां पर है, जब आप बलूचिस्तान देखेंगे तो नक्शे को देखने के साथ साथ नक्शे को पढ़िए भी, आप बकायदे उसकी स्टडी कीजिए कि भारत के पश्चिम में जब हम राजस्थान पहुंचते हैं तो राजस्थान का पूरा एरिया इधर आप देखेंगे बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, आपको समझ में आएगा। फिर जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर, ये जोधपुर तो थोड़ा सा किनारे पड़ जाता है लेकिन चलिए मतलब जिला तो पड़ ही जाएगा, वहां पड़ता है। फिर आप जब बलूचिस्तान को ढूंढेंगे तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा, और फैक्ट मिलेगा दोस्तों मोहनजोदारो का, जिसे आप सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, वो उस बलूचिस्तान एरिया में ही है मोहनजोदारो, और आपको मालूम है कि अभी मोहनजोदारो पर फिल्म आई हुई है। क्या ताज्जुब है कि अगर इस पर पूछ लिया जाए कि साहब आप बताइए कि मोहनजोदारो पाकिस्तान में तो है लेकिन पाकिस्तान के किस प्रांत में है, क्योंकि भारतीय इतिहास का वो हिस्सा है मोहनजोदारो, सिंधु घाटी की सभ्यता में हम मोहनजोदारो को ही पढ़ते हैं, पहले तो इसको मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता था। तो इस तरीके से अब आपने देखा तो नक्शा है, लेकिन नक्शे को देखने के ही प्रोसेस में आपने अपने नॉलेज को एक्सटेंड कर दिया है, मतलब नक्शे को देखा ही नहीं है नक्शे को पढ़ा है, और पढ़ने के बाद फिर आपने अपनी कैपेसिटी इस तरीके के बढ़ा ली कि जो आपको न तो कहीं किताब में पढ़ने को मिला, न कहीं आर्टिकल में देखने को मिला, और न मैंने बताया। आपने खुद ब खुद उसे जान लिया है। तो मित्रों, इसे कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, और इसी को ही मैं आप लोगों को इशारे से बताता हूं, कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, सलाह देता हूं। अब स्वाभाविक है कि मानना न मानना आपका अधिकार है, बताना मेरा दायित्व है। तो मित्रों, ये बलूचिस्तान सीमा पार आतंकवाद के बारे में मैंने थोड़ी सी बातें की। इसके बाद दो खबरें और हैं दोस्तों। बांग्लादेश के साथ भारत की ने जो सूचना जो चल रहा है, इसकी सूचना के क्षेत्र में मित्र मतलब एक तरह से संधि, एक सहयोग करने की बात है कि भारत और बांग्लादेश मिलकर के जो वहां के मुजीबुर रहमान, जो वहां के स्वतंत्रता सेनानी और जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश आजाद हुआ था, उन पर वृत्त चित्र बनाएंगे, और एक आकाशवाणी मैत्री की भी शुरुआत होने जा रही है। तो ये जो मैत्री है ये बांग्लादेश के लिए शुरू हो रहा है, दोनों देश मिलकर के इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो ये नाम आपके दिमाग में रहना चाहिए। और दोस्तों, जो अगली और आखिरी खबर थी वो रियो ओलंपिक की थी, और आपने सुना कि उसमें जो साक्षी मलिक हैं उनके बारे में रिजल्ट सुना, लेकिन सुबह के कुछ अखबारों ने इस बात पर लिखा कि साक्षी मलिक भारत की वो पहली महिला पहलवान हो गई हैं जो ओलंपिक में विजयी रही हैं, और हमारे देश के लिए वो पहला ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रही है। तो मित्रों, इस सफलता के लिए मैं आप सब की ओर से, हम सब की ओर से साक्षी मलिक को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और सच पूछे तो तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने कम से कम भारत का ओलंपिक के लिस्ट में भारत को शामिल कराने की शुरुआत कर दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि शायद आगे भी कुछ ऐसी अच्छी खबरें पढ़ने को मिलेंगी। तो मित्रों, साक्षी मलिक का नाम आपको मालूम होना चाहिए, ये पहलवानी में, और भारत ने पहली बार कोई महिला पहलवान मतलब ओलंपिक में मेडल लेकर आ रही है। तो दोस्तों, आकाशवाणी समाचार से इतना ही था, और अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर से। सच पूछे तो मुझे इस बात की कम चिंता होती है दोस्तों कि आपको क्या क्या पढ़ने को दिया जाए, वो तो बहुत सारे हैं, पढ़ने की चीजें तो कम नहीं है, एक जीवन कम पड़ जाएगा। मुझे जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो ये होती है कि कैसे इस तरीके से आपको दिया जाए कि आप कम से कम भ्रमित हो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप भ्रमित ही ना हो, लेकिन मैं आपके भ्रमित होने की जो पेरिफेरी है, जो सीमा है, जो वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उसे कम से कम कर सकूं। इसलिए मित्रों, कभी कभी होता है कि बहुत सारे क्लिपिंग्स आ जाते हैं जिनमें सिविल सर्विस को लेकर के थोड़े थोड़े अंश होते हैं, लेकिन मेरे साथ दिक्कत है कि मैं उसे कटिंग में छोटे से अंश को आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। फिर आप सबकी अपनी बैकग्राउंड भी अलग है, जिसके बारे में कल भी मैंने थोड़े से अपने धर्म संकट की चर्चा आपसे की थी। तो मित्रों, मैं आज सोच रहा था कि क्या मैं क्लिपिंग्स की संख्या कम कर दूं। मैंने जब कम करने के बारे में फैसला किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये क्लिपिंग्स उनके लिए तो फायदेमंद हो सकती है जो स्टेट सिविल सर्विस में अपीयर हो रहे होंगे, या जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो नहीं, इसे रहने दिया जाए। तो कुल मिलाकर के ये हुआ मित्रों कि मैं क्लिपिंग्स कम नहीं कर सका। तो अब मैंने ये सोचा है कि कभी कभार मैं जो क्लिपिंग्स की जो प्रायोरिटीज होती हैं, जो सबसे आपके लिए सिविल सर्विस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होंगे, उस प्रायोरिटी के बारे में कुछ बता दिया करूंगा। बाकी आप सब अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी बैकग्राउंड और जरूरत के हिसाब से फैसला कर लेंगे। दोस्तों, कुछ अच्छी क्लिपिंग्स हैं। एक इकोनॉमिक टाइम्स का है कि भारत को कैसे इनोवेशन का हब बनाया जाए। सिविल सर्विस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लिपिंग्स आप लोग जरूर देखेंगे। और इसी तरीके से बिजनेस स्टैंडर्ड जो हिंदी का है, उसका एडिटोरियल कमेंट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि बैंकों की कितनी बुरी हालत हो गई है। इसी तरह से और भी कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थानों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, और जो पब्लिक सेक्टर है इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर। इस क्लिपिंग्स को भी आप महत्वपूर्ण माने। दोस्तों, एक नरीमन जी का, जो फली नरीमन है, जो बहुत ही मतलब विख्यात और प्रतिष्ठित हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने लिखा है इंडिया नीड्स ए कॉलिशन, इंडियन एक्सप्रेस की क्लिपिंग्स है, कि भारत को अब गठबंधन चाहिए। मतलब जो हमारी सरकारें बन रही हैं, तो वे गठबंधन की सरकार के दौर में हम आ गए हैं, और वही शायद हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉलिटिक्स का जो जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर है उसके लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एक नया व्यू देगा कि क्लियर कट मेजॉरिटी की जगह वो कॉलिशन की बात क्यों कर रहे हैं। है ना, तो आपकी अप्रोच को वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड करेगा, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मित्रों एक है फिर राष्ट्रीय सहारा का सेज पर लेकर के, जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, हालांकि अब इसकी चर्चा काफी कम होने लगी है। 2000 में शुरू हुआ था, दो साल तीन साल पहले 2013 में इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब धीरे धीरे सेज की बात कम होने लगी है, आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसे देख लेना अच्छा होगा, तो मैं ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दैनिक भास्कर में एक लेख चेतन भगत का है, खासकर ओलंपिक मेडल्स को लेकर के, तो कुछ उन्होंने अच्छे व्यूज दिए हैं, एक दो बहुत अच्छे पॉइंट दिए हैं कि खेल पर कैसे हमें एक ओलंपिक फंड अलग से स्थापित करना चाहिए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह के उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, और फिर बजट कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, क्यों बढ़ाया जाना चाहिए, तार्किक ढंग से उन्होंने अपनी बात लिखी है। तो भारत में खेलों के सुधार को लेकर के जो आइडियाज कुछ हो सकते हैं, तो इसमें से आप एक दो आइडियाज नोट कर सकते हैं, वो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। और बाकी मित्रों कुछ और भी मैं क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने जरूरत के हिसाब से आप देख लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्लिपिंग्स हैं, जो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को उसे एक बार नजर मार ही लेना चाहिए, भले आप इन सब के बारे में जानते हैं, तो मित्रों जो चीज हम जानते हैं उसको फिर से जान लेने पर वो हमारे एक अच्छा हो जाता है, एक हम उसे रिवाइज कर लेते हैं, उपयोगी ही होता है, और कुछ ना कुछ तथ्य नए मिलते ही हैं, तो वो आप लोग जरूर देख लें। और बाकी जो दूसरे क्लिपिंग्स हैं अपने अपने हिसाब से आप उनके बारे में निर्णय कर लें। तो दोस्तों लगभग 21:30 का समय हो चुका है, तो आज फिर से ऐसा वक्त मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि हम प्री के जो क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास हैं, जो अभी 7 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है, उसके बारे में बातचीत कर सकें, क्योंकि बहुत छोटे टुकड़े में बातचीत करना बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं जिसके बारे में स्टूडेंट ईमेल भी लिख रहे हैं कि दोस्तों जैसे ये पेपर हो रहा था और पेपर होने के बाद मेरे पास जो फीडबैक आए ईमेल के जरिए भी और फोन के जरिए भी, उसको मैं बिल्कुल 3 भागों में स्पष्ट रूप से बांट कर देख सकता हूं। चलिए अब हम प्री के पेपर के बातचीत की शुरुआत थोड़ी सी कर ही देते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि वो जो फर्स्ट सेकेंड बैच के जो स्टूडेंट रहे हैं हमारे जो क्लास के, और जो एक लंबे समय से जो डेली ऑडियो को सुन रहे हैं, उनका फीडबैक था कि सर पेपर ठीक था, अच्छा था, और मैं कितने परसेंट स्कोर होगा, जब मैंने ये पूछा तो बोले सर लगभग 60% तो सही हो गया है और बाकी का देखते हैं कि क्या होगा। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि 55-60% उनका स्कोर हो जाएगा, ये उनका फीडबैक था। दूसरा फीडबैक वो था मित्रों जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो 4th बैच के स्टूडेंट थे, उसमें से तो बहुत कम ही लोग बैठे थे जो मेरे पास जानकारी है, और इसके बाद जिन्होंने अभी अभी डेली ऑडियो सुनना ही शुरू किया है, कुछ ही 4-6 महीने ही हुए होंगे, वो बड़े खुश थे कि करंट अफेयर से इतने क्वेश्चन आए और डेली ऑडियो में काफी कुछ कवर किया गया था, लेकिन चूंकि कैपेसिटी उनकी उस तरीके की नहीं हो पाई थी, तो उनका स्कोर वो अपनी जो बात बता रहे थे लगभग 45% के आसपास, 40-45% के आसपास बता रहे थे, तो वो निराश थे, वो पेपर को थोड़ा सा कठिन ही मान रहे थे, लेकिन उनको ये भी लग रहा था कि नहीं नहीं इसको हम कर लेंगे। तीसरा वो थे मित्रों जो सुन भी रहे थे, और उसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने कभी क्लास भी अटेंड की हुई है, उनका कहना था, और जिन्होंने जो वैसे भी जो नहीं सुन रहे हैं कुछ ऐसे भी मेरे पास मेल आए हैं, बकायदे लिखा होता है कि हालांकि मैं आपका डेली ऑडियो नहीं सुनता हूं, कभी कभी सुन लेता हूं, इस तरह के वाक्य लिखे होते हैं, जिनका कहना था कि इस बार का पेपर बहुत टफ था, नॉन कन्वेंशनल था, मतलब जो अभी तक पूछा जाता था उस सिस्टम से हटकर था, इस तरह की बातें कह रहे थे, तो उनको पेपर बहुत कठिन लगा। तो ये 3 श्रेणियां हो गई दोस्तों, एक तो पेपर अच्छा था सिलेक्शन में हो जाएगा, दूसरा यह है कि नहीं पेपर तो अच्छा था लेकिन थोड़ा सा कठिन साइड में था तो थोड़े से हम डाउट में हैं, और तीसरा यह कि नहीं पेपर बहुत कठिन था, ये 3 श्रेणियां हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने इस पेपर को बहुत इत्मीनान के साथ देखा है मित्रों, तो मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं था, पेपर बहुत शानदार था, और यहां तक कि पिछले साल के पेपर की तुलना में सरल भी था, ये मेरा स्टेटमेंट है। अब आप जानना चाहेंगे कि स्कोर क्या हो सकता है, कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकते हैं, मित्रों बताना देखिए उतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैं अपने पिछले इतने लंबे अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि इस बार कट ऑफ मार्क्स, पिछली बार 53% अगर हम मान लें, तो इस बार ये हो सकता है कि 54% के आसपास चला जाए, बट नॉट मोर देन 55%, 55% से अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि वो पेपर थोड़ा सा जो सरल था उसके आधार पर 1-1.5% का ही फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हायर लेवल पर होता है उसमें तो लड़के बहुत ज्यादा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जो भीड़ होती है एक जैसे नंबर पाने वालों की संख्या वो लोअर लेवल पर होती है, नीचे के स्तर पर होती है। तो मुझे लगता है कि 54% के आसपास होना चाहिए, नॉट मोर देन 55%, ये मेरा इस बार का असेसमेंट है। तो मित्रों अब हम इसके बारे में आगे फिर बातें करेंगे। अब मैं आता हूं थोड़ा सा लाइफ मैनेजमेंट पर, उसके लिए बहुत कम वक्त बचा है। दोस्तों मैं दिमाग की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा था कि कैसे हमारी दृष्टि ही सब कुछ होती है और वही हमारे पूरे के पूरे अंतर जगत का संचालन करती है। सिविल सर्विस में भी यही बात मायने रखेगी और आपके प्रिपरेशन में भी यही बात मायने रखती है दोस्तों, लेकिन इसे आप तभी समझ सकेंगे, विश्वास कर सकेंगे जब आप इसे अनुभव करेंगे। मैं आपको दो छोटे छोटे किस्से सुना रहा हूं जो सच के हैं और मेरे अपने हैं। मित्रों ये उस समय की बात है जब हम लोग ट्रेनिंग में थे, तो हमारे साथ हमारे हम लोगों की ट्रेनिंग के कुछ समय के बाद जो सेकेंड बैच है, हमारे से नेक्स्ट जूनियर बैच वो भी ट्रेनिंग के लिए आ गया था। तो हम लोग अपने जूनियर बैच को फेयरवेल दे रहे थे, वेलकम कर रहे थे, हम लोग उनको वेलकम कर रहे थे क्योंकि वो आए थे। लेकिन जूनियर बैच के पहले स्टूडेंट्स मिलते रहते थे तो उनसे कुछ लोगों से परिचय भी था। तो रात का समय था, डिनर चल रहा था, तो उसमें मेरे एक जूनियर थे, उन्होंने मुझसे आकर के कहा कि सर वो आप वो खा करके देखिए, वो बहुत टेस्टी बना है। सर आपने क्या खाया उसे? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं खाया। बोले सर वो बहुत टेस्टी, आप खा करके देखिए। मैं गया और जो वहां का जो मेस का जो इंचार्ज था वो जानता था कि मैं वेजिटेरियन हूं, तो उसने तो जब मैं लेने लगा तो बोले कि सर ये आप मत लीजिए। मैंने कहा क्यों, ये तो बता रहे हैं बहुत टेस्टी। बोले कि सर ये नॉनवेज है और आप नॉनवेज नहीं लेते। मैं कहा अच्छा ये नॉनवेज है, ठीक है। तो मैं घूमते घुमाते फिर थोड़ी देर में टहलते उनके पास पहुंच गया, सब इस खड़े होकर के खा रहे थे। तो उसने मेरे प्लेट में जब नहीं देखी उन्होंने तो कहा कि सर आपने वो नहीं लिया। मैंने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं लिया, वो तो नॉनवेज था। बोले नहीं सर वो वेज था। मैं कहा नहीं नहीं, वो उसने जो मेस का जो इंचार्ज है मैं वहीं वो खड़े थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर वो मत लीजिए आप, वो नॉनवेज है। मित्रों मेरा इतना कहना था कि उनके पेट में गुड़गुड़ी होने लगी और विद इन अ मिनट किनारे गए वो और उन्होंने वोमिट कर दिया, उनको वोमिटिंग हो गई। क्यों वोमिटिंग हो गई? क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन थे, वो बहुत प्योरेस्ट वेजिटेरियन थे, वो बड़े धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं। क्या हुआ? अब आप देखिए कि वो जो अगर भोजन के रूप में ले तो उन्होंने पसंद करके खाया, टेस्टी भी लगा और उनके पेट में मौजूद था, कुछ नहीं हो रहा था। मतलब खाने में तो अगर कुछ गड़बड़ी होती, खाना अगर प्रदूषित होता, सड़ा गला होता तो पहले ही वो अपना कमाल दिखा चुका होता, लेकिन खाना तो ठीक ठाक था, वो उनके पेट में पड़ा हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उन्हें ये सत्य पता लगा कि वो तो नॉन वेजिटेरियन था, अब आप देखिए कि इतनी बुरी हालत उनकी हो गई कि उनको वोमिटिंग हो गई और फिर वो खाना नहीं खा सके। मित्रों ये क्या हुआ? तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के प्रति जो हमारी दृष्टि है वो मायने रखती है, या वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो मायने रखता है। मैं केवल फूड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी के सारी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं कि कैसे एक सोच हमारे अंदर के पूरे बायोलॉजिकल सिचुएशन को बदल कर रख देता है। हमारी सारी चीजें उलट फेर हो जाती हैं, जो हमारी ताकत है वो कमजोरियां बन जाती हैं और जो हमारी कमजोरियां हैं वो हमारी ताकत बन जाती हैं। अद्भुत। मित्रों मैं आपको दूसरा और आखिरी एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। मित्रों उस समय हम लोग, मेरी पोस्टिंग राष्ट्रपति भवन में थी, तो जो प्रेसिडेंट स्टेट का जो कैंपस है वहीं हम लोगों का बैंगलो था, वहीं हम लोग रहते थे। तो हमारे एक और परिचित थे, प्रकाशक थे, वो बड़े भले व्यक्ति थे, मिश्रा जी थे, और तो उनके एक बहुत अच्छे परिचित थे, देहरादून के पंडित जी कहलाते थे, वो देहरादून के पंडित जी उनका नाम ही था। उनको वो लेकर के हमारे यहां आए, हम लोग की बातचीत होती रहती थी, तो वो बड़े भले व्यक्ति थे, तो वो पंडित जी फिर 3-4 दिन तक वो हमारे यहां रुके भी। मित्र उनकी उम्र रही होगी 30-32 साल की के आसपास की, और अद्भुत ज्ञानी, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो चाहे तंत्र विज्ञान हो, अद्भुत ज्ञानी, मैं बार बार कह रहा हूं अद्भुत ज्ञानी। और उनकी प्रतिष्ठा इतनी थी कि वो विदेशों में ही घूमते रहते थे, लोग पकड़ पकड़ करके ले जाते रहते थे, क्योंकि हम लोगों की जब बातचीत थी तो घर पर ही रुके हुए थे, तो मैं उनके ज्ञान और उनकी क्षमता शक्ति से बिल्कुल स्तब्ध था। तो मित्रों मजेदार बात यह जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि वो नीले रंग की जीन्स पहनते थे, हल्के नीले रंग की जीन्स जो फेड हो जाती है, कलर वलर देखते हैं ना आप उड़ा दिए जाते हैं घुटनों उटनों के पास से, वैसी जीन्स पहनते थे और ऊपर जर्सी पहनते थे, मतलब वो शर्ट पैंट नहीं पहनते थे। धोती कुर्ता की तो बात भूल ही जाइए, कंधे पर गमछा की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, माथे पर टीका आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, चुटिया का कोई सवाल ही नहीं है। मैं ये वर्णन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब हम हमारे दिमाग में जब पंडित की तस्वीर आती है, कोई इस तरह के धार्मिक पुरुष की जो तस्वीर आती है, तो क्या सोचते हैं, वो धोती कुर्ता, वो भी सफेद रंग का धोती कुर्ता या गेरुए रंग का पहना हुआ होगा, कंधे पे गमछा पड़ा हुआ होगा, टीका लगा होगा चंदन का, इस तरह की कल्पना हम करते हैं। आप यकीन करेंगे कि दो तीन दिन तक मुझे विश्वास करने में मुश्किल हो गया कि ये पंडित जी हैं, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, जबकि दूसरी तरफ मैं उनके ज्ञान के प्रति स्तब्ध था। क्या ज्ञानी है, उनका मैं सम्मान कर रहा था लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये पंडित जी होंगे। क्यों? सिर्फ उनकी वेशभूषा, मतलब मेरे दिमाग में वेशभूषा की जो तस्वीर बनी हुई है उसमें वो फिट नहीं बैठ रही थी वो वेशभूषा, और इसके आधार पर मैं उनकी चीजों को रिजेक्ट कर रहा था। सपोज कोई ऐसे ही मेरा परिचय करा देता और बातचीत मेरी नहीं होती जिससे कि मैं उनके ज्ञान से प्रभावित होता, तो मैं उन्हें कभी पंडित जी मानता ही नहीं, कभी नहीं मानता। मतलब ज्ञान किनारे चला गया, जो सही है वो तो किनारे चला गया, जो ज्ञान है क्षमता है वो सही है, और पहनावा प्रमुख हो गया, मतलब पहनावे के आधार पर मैंने उनके बारे में अपनी धारणा बना ली। तो मित्रों ये बताइए कि ये पंडित जी का दोष है या मेरी अपनी खोपड़ी का दोष है, मेरी अपनी सोच का दोष है, मेरी अपनी दृष्टि दोष है, ये मेरी अपनी दृष्टि दोष है। वो तो कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े का काम है शरीर के ऊपर, आप धारण कीजिए, खत्म हो गई बात। वो कपड़ा अपना काम कर रहा है, चाहे धोती पहन लीजिए, चाहे पैंट पहन लीजिए, चाहे जर्सी पहन लीजिए, कपड़े का जो उद्देश्य है वो हर कपड़ा पूरा कर रहा है, दैट्स ऑल। लेकिन ये तो एक वैज्ञानिक सोच होगी, हम वैज्ञानिक सोच के आधार पर चल कितना पाते हैं और वहीं जिंदगी की सारी गड़बड़ियां हो जाती है। मित्रों तो आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। तो मित्रों अब मैं आता हूं आज के अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने प्यारे दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और कुछ उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम मैं ले रहा हूं। वो हैं धर्मिंदर शर्मा, रितेश झा सुपौल बिहार से, भारती अहिरवार, प्रशांत कुमार, सुनील कुमार सीकर राजस्थान से, संदीप कुमार लखनऊ से, राकेश कुमार लखीसराय बिहार से, मानस झा नई दिल्ली से, मेघा करण रजक पूर्णिया बिहार से, और स्नेहा कुमारी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके प्रति भी बहुत बहुत आभार। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज के डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।